ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 18 श्लोक संख्या 65। मनाहा भावा मत भक्तः मत याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियः असि मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामै वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सदैव मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यवसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार डालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावनामय होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहाँ वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र सखा है। जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसे ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सबले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उससे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप है, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन ही यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। एक बार श्रील प्रभुपाद यही श्लोक के ऊपर प्रवचन दिए, और वो प्रवचन के प्रथम शब्दों ऐसे थे, व्हाट इज द डिफिकल्टी, इसमें कठिनाई क्या है। और श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले कि भगवान कृष्ण का चिंतन करने में क्या कठिनाई है? नहीं, कृष्ण की पूजा करने में कठिनाई है क्या? नहीं। तो कृष्ण का चिंतन करना, इनकी पूजा करना, इनका नाम का उच्चारण करना, इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं है। एक ही समस्या है कि हम माया से आ सकते हैं, अनादिकाल से हम माया संसार में हैं। अनादि कर्म फले परिभवार्णव जले थोड़ी बारी न देखी उपाय, यही हमारी अवस्था है। हम माया में है क्यों? बहुत बार लोग ऐसे पूछते, हम माया के बीच में हम फंस गए क्यों? उसका कारण क्या है? कृष्ण भूली से जीव अनादि बाहिमुख, अतएव माया तारे दया संसार दुख। हम संसार दुख के बीच में यही कारण से, क्योंकि हम कृष्ण को भूल के सांसारिक सुख भोगने की इच्छा से भौतिक जगत में आए हैं, परंतु वास्तव में हम दुख मिलते। तो बुद्धिमान जन यही सब विषय समझ सकते हैं, इसलिए भगवान कृष्ण कहते सर्वगुह्यतम भूय, यही पुनः में सर्वगुह्यतम ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का सारांश कहते हूँ तुमको अर्जुन, मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, भव मद भक्त और मेरे भक्त बन जाओ। तो बुद्धिमान लोग ये सब समझ सकते हैं, परंतु माया का प्रभाव से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गए, तो हमें क्या करना है? तो भक्ति साधना करना चाहिए, जिससे वो दुराभ्यास, गलत अभ्यास, कृष्ण का चिंतन नहीं करना, उससे हम बच जाएंगे और नया अभ्यास आएगा जो जीव का स्वरूप धर्म है, सदैव कृष्ण का चिंतन करना। परंतु हम माया का सागर में है, हम क्या करेंगे? तो हमें इस प्रकार करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद यह लिखते हैं, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने के सदा अवसर प्राप्त हो, और उसके अतिरिक्त मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हो, वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। यही हेतु से ये नंदग्राम का कृष्ण भावनामय ग्रामीण समुदाय सृष्ट हुआ, यही उद्देश्य है। क्योंकि नागरिक जीवन शैली सब जो यहाँ आए हैं तो पहले शहर में रहते थे, तो यहाँ आया है क्योंकि शहर में भी हरे कृष्ण बोलना निषेध नहीं है। शहर में कृष्ण का मंदिर जाना निषेध नहीं है, सबके लिए उपलब्ध है। तो यहाँ आना क्या क्या आवश्यकता था? तो पहला विषय है कि आधुनिक नागरिक जीवन शैली में बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना है। रोटी कपड़ा मकान ये सब व्यवस्था करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करना है, उग्र काम करना है। और इसलिए कृष्ण का स्मरण करना कठिन होता है। और अभक्तों के बीच में निवास करना पड़ता है और माया के बहुत आकर्षण है, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, फैशन। यहाँ पर हमारा खुद का फैशन का अंदाज है। श्रील प्रभुपाद ऐसे लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत संघ में एक फैशन है, धोती या साड़ी पहनना और मनुष्यों के लिए मुंडित होना और सबके भूषण हो तिलक, वैष्णव तिलक। ये हमारी जीवन शैली है जिससे हम अवसर में लेंगे कृष्ण का स्मरण करना। तो कृष्ण का स्मरण करना नागरिक जीवन शैली के बीच में असंभव नहीं, परंतु बहुत मायिक आकर्षण है। तो वो सब नहीं है यहाँ पर, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, वो तो नहीं है। और सब भक्त तो पूरा समर्पित है भगवान कृष्ण की सेवा में। यहाँ पर माया नहीं है, ऐसा है नहीं, माया नहीं है यहाँ पर। माया कि अभिव्यक्ति क्या क्या है, टीवी, सिनेमा, इंटरनेट, फैशन, गारबरस सिनेमा, संगीत, ऐसे गारबरस आजकल तो एक्चुअली वो माता जी की पूजा करने के लिए, लेकिन आजकल वो व्यभिचार, उसका फल होता है व्यभिचार। तो वो सब नहीं है। तो यहाँ पर माया तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा है नहीं, हम माया का संसार के बीच में है। केवल यहाँ आने से माया से पूरा मुक्त होना संभव नहीं है, परंतु यहाँ पर वो प्रयास है ऐसे वातावरण सृष्टि करना जिसमें मन मना भव मद भक्त हो मध्याजी मांग नमस्कुरु, वो सहज होगा। परंतु हम माया का जगत के बीच में है जिसका नाम है संसार। तो वो सब सिनेमा इत्यादि हम छोड़ दें, परंतु माया के प्रकट अभिव्यक्ति नहीं होते फिर भी मन में है। मन मना सदैव मुझको चिंतन करो, इसमें कठिनाई क्या है? कृष्ण का चिंतन करना इसमें कठिनाई क्या है? कठिनाई है कि अनादि काल से मन में बहुत 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 अलग अलग प्रकार के संस्कार है, वो सब जो कृष्ण बहिर्मुखी है, सब जो अलग अलग ढंग से हमें माया के पास आकर्षित करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हमें सदैव सावधानी रखना चाहिए जिससे हम यहाँ पर भी माया से आकृष्ट नहीं होंगे। इसलिए हम वैदिक संस्कृति को पालन किया है जितने भी संभव हो, जैसे हमारे पोषक किस प्रकार है इसी प्रकार गौर भक्त प्रियवेश दधाना। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्ति के अनुकूल्य में, ये अनुकूल है गौर भक्त प्रिय वैष्ट धान, उस प्रकार पोषक पहनना जो गौर भक्तों की प्रिय है, जिसमें जीन्स नहीं आते, रामदेव के जीन्स भी नहीं आते, धोती उत्तरिया, ये सब गौर के भक्तों की प्रिय है। ये फोटो मिलते है भक्तिविनोद ठाकुर इनके जज के पोशाक पहनते हैं ऐसे, और दूसरा भी मिलते है जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर वैष्णव वस्त्र पहनते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक उत्तरदायित्व पूर्ण गृहस्थ भक्त है, साकार के सेवक थे, परंतु इनके आंतरिक परिचय था कृष्ण के भक्त, अमित राधिका पक्षपाती सदा, कृष्ण के भक्त, राधा कृष्ण के भक्त। तो हमें वैसे होने भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ होते हुए भी जल्दी वो साकारी काम से निवृत्त हुए, जिससे वे मायापुर धाम नवरी धाम की सेवा में पूरा समय तत्पर हो सकते। तो इसी प्रकार गृहस्थ भक्तों के लिए ऐसे कृष्ण भावनामय ग्रामीण समुदाय एक अवसर है, जिससे वे जवानी में भी वो नागरिक मायिक जीवन से निवृत्त हो सकते और इस प्रकार जीवन व्यतीत कर सकते। स्वकर्मणा तमाभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवाः, अपने अपने स्वधाम पालन करने के साथ कृष्ण सेवा करना, और इस प्रकार आसाने से जीवन की संसिद्धि प्राप्त करना। तो जीवन की संसिद्धि प्राप्त करना कैसे? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कारो। तो ये नंदग्राम, ये ग्राम, ग्राम का मतलब जिसमें लोग एक साथ रहते हैं, इस प्रकार बनाया है जिससे सदैव कृष्ण का चिंतन करना सरल होगा। और नागरिक जीवन में संभव है, परंतु ज्यादा सरल नहीं है, क्योंकि मायिक, बहुत मायिक आकर्षण है, जिससे मन कृष्ण का चिंतन से विचलित हो जाता है। और मांग नमस्कारो, सब जो यहाँ रहते हैं सब बाध्य है प्रतिदिन कृष्ण का मंदिर में बार बार कृष्ण को नमस्कार करना। और बच्चे भी, जो भाग्यवान बच्चे, भाग्यवान जीव जो अवसर मिलते वैष्णव परिवार में जन्म लेना यहाँ नंदग्राम में, तो जीवन का शुरुआत से इस प्रकार प्रशिक्षण मिलते कि कृष्ण के सामने और वैष्णवों को सामने नमस्कार करना, मन मना भगवान भक्तो मध्याजी, कृष्ण की पूजा करने, वो ग्राम निवासियों के जीवन का केंद्र बिंदु यही है कि सभी भक्त स्वकर्म, अपने अपने कर्म में व्यस्त रहते हैं दिन में, परंतु तीन बार दिन में एकत्रित होकर सब एक साथ कृष्ण की पूजा करते हैं। पूजा केवल पूजा औपचारिक रूप से भगवान की आरती करना केवल वो नहीं, श्रवण कीर्तन ये सब भी पूजा है। तो इस प्रकार सब एक साथ कृष्ण भक्ति करते हैं, और इस प्रकार सब भक्त का जीवन का उद्देश्य है केवल उसी प्रकार कार्य करना जिससे सब तो पूरा शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो ये प्रकल्प विशेषकर गृहस्थ भक्तों के लिए और बच्चे के लिए, जिससे वे अवसर मिलेंगे इस प्रकार, जिससे मनुष्य इस प्रकार काम करे कि उसके सारे नित्य काम कृष्ण के लिए हो। तो सब लोग का कुछ ना कुछ काम करना है। शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध कर्मण, सब बाध्य है भौतिक संसार में, सबका कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, चाहे भी ब्राह्मण का कर्म, यजन याजन इत्यादि, पठन पाठन, दान प्रतिग्रह, क्षत्रिय का कर्म है अनुशासन करना और नागरिकों की देखभाल करना और रक्षा करना, वैश्यों का काम है कृषि गौ रक्षा वाणिज्य, और शूद्रों का काम है परिचर्या और अलग अलग प्रकार कला उद्योग इत्यादि करना। उद्योग का मतलब ये उग्र कर्म फैक्ट्री जैसे नहीं, वो जैसे यहाँ पर वो थांड वीविंग ऐसे हैंडलूम ऐसे होते हैं। तो सबका स्वकर्म करना है और सब एक साथ कृष्ण की भक्ति करते हैं, सब अवसर मिलते हैं अपने अपने कर्म में व्यस्त रहने से, सब अवसर मिलते हैं सदैव कृष्ण का स्मरण करना। और वातावरण उसलिए अनुकूल है, हम उसी प्रकार वातावरण सृष्ट करना चाहते हैं जो अनुकूल होगा कृष्ण भक्ति के लिए। तो नागरिक जीवन में भी वैसे हो सकते, परंतु क्या है ऐसा होते है नागरिक जीवन में, भारत में भी आजकल जो पुण्य भूमि होनी चाहिए, ये भारत जिसमें मैं खुद के आंखों ये संस्कृति देखी जो एक पीढ़ी के पहले, कि सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे और पूजा या पाठ या जप या ध्यान, तो इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में सब ऐसे किए थे। आजकल यदि कोई करते हैं तो दूसरे लोग निंदा कहते हैं, ऐसा कहते हैं क्यों, ऐसा होता है नहीं, आपका अनुभूति है नहीं, तो पहले आप सब नागरिक जीवन से आप सब रेफ्यूजी है, सब भाग गया और बच गया उसी प्रकार जीवन से। तो हमें बहुत तत्पर होने चाहिए, सचेतन होने चाहिए, जिससे माया यही वातावरण में प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि माया हमको आशीर्वाद देंगे, ठीक है बहुत अच्छा काम करते हो, वो माया की सेवा उस प्रकार नहीं है, माया भी कृष्ण की शुद्ध भक्त है, परंतु माया की सेवा विचित्र है। यथा सम्मोहित हो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, और त्रिगुणों से बद्ध जीवों को बद्ध रखना, माया बाध्य है सबको बद्ध करना, वो माया की सेवा है। और यदि कोई माया का आवरण से मुक्त होने का प्रयास करते, वो आवरण आत्मिका वृत्ति माया की, जिससे यथा सम्मोहित जीव सब जीव सम्मोहित रहते, तो माया उनकी प्रक्षेपात्मिक वृत्ति लेते हैं, जिससे मुक्त होने वाले मुक्त नहीं होंगे। और विशेषकर जो कृष्ण भक्ति करने चाहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य अहित्य की अप्रतिहता रूप से, जिससे ऐसे भक्त के पतन हो, वो माया का प्रयास है। तो जिससे कृष्ण भक्ति के लिए सब कुछ अनुकूल होगा, इसलिए हम वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति अनुशीलन करने के लिए। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यन आवृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम, अनुशीलन करना मतलब अभ्यास करना, ध्यान से अभ्यास करना। तो वैदिक संस्कृति अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए, परंतु वो वैदिक संस्कृति से क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है हमें समझना चाहिए। तो वैदिक संस्कृति में पशु बलि होते हैं, विशेषकर यही मौसम में नहीं, दुर्गा पूजा हो रही है, पशु बलि वो यहाँ पर नंदग्राम में नहीं हो, और नर बलि भी होते हैं, भागवतम में भी उसका वर्णन है। कोई तैयार है बलि होना? नर बलि वो है नहीं, वो नवम स्कंद में हरिश्चंद्र शूनाशिप का वृतान में, वो तो नहीं होगा यहाँ पर, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। तो वैदिक संस्कृति से सब कुछ जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति के लिए वो सब हम ग्रहण करेंगे, और जो प्रतिकूल है हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो क्या है अनुकूल? वो सब अभ्यास जिससे मनमना भव मद भक्त हो मध्याजी मांग नमस्कुरु, जिससे उसका पोषण होगा, और सब कुछ जो वो उसका प्रतिकूल है जैसे देव देवी पूजा, वो भी वैदिक संस्कृति में है। देव देवी देवी पूजा गोपियां करते हैं, कार्तिक मास के बाद क्या आते है? एक व्रत, हाँ कात्यायनी व्रत, जो गोपियां करती थी किस लिए? जिससे कृष्णा उनके पति होते। तो हम वैसे नहीं कर, हम गोपियां की पूजा करेंगे, गोपियां का स्मरण करेंगे कि वे ऐसे किए हैं, लेकिन हम स्वयं नहीं करेंगे। हम देवी देवियों की पूजा करते हैं कैसे? कैसे हम करते हैं? कृष्ण की भक्ति करने से। इसके बारे में एक श्लोक है भागवत में, यथाथुरोर मूल निषेचने न तृप्यन्ति तत् स्कंद पूजा, वो एक उदाहरण है। वो क्या है? वो जैसे पेड़ के जड़ में और मूल में पानी डालने से वो वृक्ष के सब शाखा पत्ता फूल फल सब पोषण मिलते हैं। और एक उदाहरण है प्राण, प्राणोपहार्च यथेन्द्रियाणम सर्वाहनम यथा सर्वाहनम अच्युत, और जैसे उदर पेट में भोजन देने से पूरा शरीर पुष्ट होते, तो इसी प्रकार यदि हम अच्युत कृष्ण की सेवा करेंगे तो सब देवी देवियों की पूजा होते उसमें शामिल होते। भौतिक संसार में देवी देवियों भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि है, एक है वायु वायु के अधिष्ठात्र देवता अधिष्ठ, और भूमि रापो नलो वायु वो सब कुछ जो चलते रहते हैं मायक संसार में, सब कुछ भगवान की परिचालन चलते रहते हैं। भगवान विष्णु जो सब कुछ पालन करते हैं, और इनके सरकार में बहुत देव देवियों हैं, तो यदि भगवान विष्णु की पूजा होती है तो सब देव देवियों संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए हम देव देवी पूजा जो वैदिक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण अंश है वो तो हम नहीं करेंगे यहाँ पर। इसके बारे में और भी विचार है भागवत का, हम सब ऋणी है देवों से ऋषियों से, देवार्षि भूतात्मा नृणं पितृणं न किंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मन यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहृत्य कर्तुम्। लोग जो परिपूर्ण रूप से शरणागत है भगवान मुकुंद, मुकुंद मतलब जो मुक्तिदाता है, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति सब ऋण से मुक्त है। ऋण किस प्रकार है, हम सब जन्म लेने के साथ हम ऋणी हैं। तो सामान्यतः हम सोचते हैं कि थोड़ा बड़ा होने के बाद यदि हम किसी से कुछ पैसा लेंगे तो हम ऋणी होंगे, तो ऐसे नहीं है। जन्म लेने के साथ हम ऋणी हैं, देवों से ऋषियों से सामान्य दूसरे प्राणियों से दूसरे मनुष्यों से और पितृजन से पूर्व पुरुषों से। परंतु जो व्यक्ति पूरी तरह कृष्ण शरणागत होते हैं वो व्यक्ति का और कुछ ऋण नहीं है किसी से, अपितु वो सब देव ऋषि इत्यादि कृतज्ञ होते हैं कि वो हमारे बच्चा हमारे शिष्य तो शुद्ध भक्त हो गया, इससे हम धन्य हो गया। वे सोचते कि हम ऋणी है वो भक्त से। तो इस प्रकार हमें कृष्ण भक्ति और उसकी संस्कृति जो साथ साथ चलते रहते हैं वो सबको सब कुछ अच्छी तरह समझना चाहिए, नहीं तो माया तो वैदिक संस्कृति के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वैदिक संस्कृति तो शास्त्र विधि के अनुसार वो सब कुछ होती है, परंतु किस प्रकार शास्त्र विधि देश काल और पात्र के अनुसार पालित होने चाहिए उसको समझना चाहिए। जो एक काल में संभव था तो शायद आजकल तो संभव नहीं होगा, और शायद यदि हम प्रयास करते हैं सब कुछ पालन करना जैसे पूर्व काल में लोग पालन करते थे तो उसका फल विपरीत होगा। जैसे वैदिक संस्कृति में हम बार बार देखते हैं महाभारत में, श्रीमद् भागवत पुराण शास्त्र में, वो सती एक पुरुष मर जाते हैं और उनकी पत्नी विधवा, तो सती कहते हैं। तो आजकल यदि हम प्रयास करेंगे वो ही करना तो संभव नहीं होगा, तो कानून से निषेध है, वो एक बात है। और समाज में बहुत बुरा जैसे देखेंगे, और कृष्ण भक्ति में तो उसका आवश्यकता नहीं है। अलग अलग विचार है जिससे हमें वैसे नहीं करने चाहिए। वो एक उदाहरण है और बहुत हो सकते। तो हमारा प्रयास है यहाँ पर वैदिक संस्कृति के अनुसार कृष्ण भक्ति पालन करना, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति वो आजकल की राक्षसी संस्कृति से बहुत अनुकूल है कृष्ण भक्ति पालन करने के लिए। परंतु क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में विचार करना चाहिए। मन मना भव मत, वो तो वैदिक संस्कृति का सारांश है कृष्ण भक्ति करना। हम कभी भी श्रवण कीर्तन विष्णु हम बंद नहीं करेंगे, वो वैदिक संस्कृति का सारांश है। परंतु वो भिन्न भिन्न उपनियम जो है और भिन्न भिन्न अभ्यास जो है, तो वो सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। और यदि सोच सोच के हम सिद्धांत नहीं मिल सकते तो आचार्य से पूछना चाहिए। इसलिए हमें आचार्य से आचार्य का मार्गदर्शन के अनुसार कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। तो आजकल कैसे जीवन व्यतीत करने चाहिए जो अनुकूल होगा कृष्ण भक्ति के लिए आजकल, क्योंकि काल पहले से पृथक है, इसलिए क्या क्या करने चाहिए क्या क्या नहीं करने चाहिए बहुत प्रश्न उठते हैं। और ये सब प्रश्न के ऊपर विचार करना तो गहरा ऐसे विचार विमर्श करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे क्या फल होगा हमें सोचना चाहिए। कुछ अनुकूल होगा कुछ प्रतिकूल होगा, तो ये सब विचार करना चाहिए। ये विशेषकर ब्राह्मणों का कार्य यही है, शास्त्रविद होना चाहिए और तत्वविद होना चाहिए। तत्वविद इस प्रकार, तो ब्राह्मणों विशेषकर ब्राह्मणों और सब वैष्णव का यही विचार उनके मन में मुख्य रखना चाहिए कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, मन मना भव मद भक्तो मद्यादि मांग नमस्कुरु, वो ही है। और सब कुछ जो हम करते हैं ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं। तो क्या अनुकूल होगा क्या प्रतिकूल होगा तो इसके बारे में कुछ विचार होना चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार का कार्य क्या अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा शायद तो वो सब तो एकदम स्पष्ट नहीं होगा। और हमारी विशेष अवस्था जो है अभी, शायद भविष्य में बहुत वैदिक क्रियाओं हम स्थापित कर सकेंगे, परंतु अभी हमारी स्थिति क्या है उसको विचार करके हमें जीवन शैली बनाना है। भविष्य में बहुत कुछ हो सकते, भविष्य में यदि हम विराट वैदिक समाज बनेंगे तो शायद एक वैदिक नगर के एक कोने में पशु बलि हो सकते, क्योंकि ऐसे लोग है जो मांस खाने से आसक्त है, और ऐसे लोग के लिए उस प्रकार विधि है शास्त्र में जो शुद्ध वैष्णव नहीं है, परंतु अभी हम वो तो नहीं करेंगे। तो देश काल और पात्र के अनुसार विचार करने चाहिए और सदैव मन में स्पष्ट उज्ज्वल रखना चाहिए कि ये सब वैदिक संस्कृति हम पालन करते हैं किस प्रकार और किस लिए। वो केवल कि हम वैदिक होने चाहते नहीं है, उस प्रकार नहीं है। कारण है कि हम वैदिक संस्कृति का केंद्र बिंदु, वैदिक संस्कृति का चरम उद्देश्य मन मना भव मद भक्त वैदेश सावेर अहम एव वेद, वो लक्ष्य, वो हमारे लक्ष्य है। हम धोती पहने तो कंस हिरण्यकशिपु भी धोती पहनने वाले थे, हम शास्त्र अभ्यास करते, रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, हम यज्ञ भी करते, इंद्रजीत रावण के सुपुत्र कुपुत्र जो था वो बहुत बड़ा यज्ञ था। तो हमारा उद्देश्य तो केवल वैदिक होना, उस प्रकार नहीं, वैष्णव होना। वैष्णव होना तो वैदिक होना का सारांश है, चरम लक्ष्य है। मंदना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्करो माँ मे वैश्यसी सत्यम ते परिजाने प्रतिजाने प्रियोसि मे, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते और अर्जुन के द्वारा हम सब पतित जीवों को कहते हैं, जिससे हम और पतित नहीं होंगे, हम भगवान कृष्ण के पास उनकी कृपा से जा सकेंगे। हरे कृष्ण, किसी का प्रश्न अगर हो पूछे। एक है पीछे से, इस व्यवस्था में मतलब यही का हाँ हाँ
ऐसी व्यवस्था में जब अपने चार जो चार वर्ण है उसमें ब्राह्मण तो हमेशा पूजन पठन पाठन में लगा रहता है, लेकिन क्या कुछ समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बाकी जो लास्ट वर्ण है जैसे शूद्र हैं वो हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो
वो तो है भगवद गीता में, स्वकर्मणार्थम अभ्याच सिद्धिं विन्दति मानवाः, स्वकर्म, स्वकर्म का मतलब ब्राह्मण तो ब्राह्मण का काम करेंगे, क्षत्रिय तो क्षत्रिय का काम करेंगे, वैश्य तो वैश्य का काम कर, और शूद्र शूद्र का काम करेंगे। स्वकर्म अनाथम अभ्याचा, स्वकर्म करना और विष्णु की पूजा करने से सिद्धि विन्दति मानव, मानव मतलब चार वर्णों, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मणों भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। आप तो भगवद गीता नहीं पढ़ते, हाँ माम ही पाथव्य पार्श्वज ये पी स्यु पाप यौन स्त्रियो वैशास तथा शूद्रास्थ पे यांति पराम गते, आप नहीं पढ़ते ये श्लोक का क्या अर्थ है पता है? भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, माम ही पार्थव्य पार्श्वज ये पी स्यु, सब लोग चाहे भी स्त्री शूद्र वैश्य यदि पूरी तरह मेरे आश्रित होते परम गति जा सकते, भगवान कृष्ण कहते। और ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए उनके लिए भी किंग पुनः ब्राह्मण पुण्य भक्ता राजाश्रयस्तथा अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्वम, स्त्री शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय सब भगवान के पास जा सकते, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, वो तो गीता में ऐसा कुछ ऐसा उपदेश नहीं है। यदि भगवान का नाम जाप नहीं करेंगे तो भक्त नहीं है, हाँ भक्ति से ही भगवान के पास जाना है, यदि कोई भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान के पास नहीं जाएंगे। विचित्र प्रश्न है, हम भक्ति नहीं करेंगे फिर भी हम भगवान के धाम जाएंगे, अब कैसे संभव? हरे कृष्णा, हाँ कुछ भक्त कहते हैं कि वो शास्त्र से कहते हैं वो क्या है श्रुति गतांग थन वांग मनोभ्य ये प्रयास स्थाने स्थित श्रुति गतांग। पहली बात है कि स्थाने स्थित ये श्लोक का अर्थ है अपना वानाश्रम स्थिति में रहना, ये शास्त्र तो सभ्य लोग को बताना है, ऐसा नहीं है कि सभी प्रकार पाप करके भक्ति करो, वैसे नहीं है। स्थान ही स्थित, यदि वो स्थान है पूरा पापमय उसी प्रकार स्थान में नहीं रह, अगर कोई है कसाई तो वो स्थान ही स्थित ऐसा नहीं, स्थान उस प्रकार स्थान होना चाहिए जिसमें पाप नहीं करना है, मांसाहार शराब पीना इत्यादि वो नहीं हो, तो स्थान तो अनुकूल होना चाहिए भक्ति के लिए, स्थान ही स्थित, यदि स्थान अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए तो वो क्या है, स्थान ही स्थित श्रुति गतांग तनु वांग मनोभ्य ये प्रायशो चिता चिता अपिता स्त्रीलोक्य, तो स्थान ऐसे होना चाहिए जिससे तनु वांग मन मतलब शरीर वचन और मन से पूरी तरह कृष्ण सेवा करना संभव हो, उसी प्रकार स्थान में स्थित होना चाहिए, परंतु उस प्रकार स्थान जिसमें सब प्रतिकूल है वचन से मन से स्थान स्थित श्रवण से कृष्ण भक्ति करना, उसी प्रकार स्थान में रहने से वो कैसे भक्ति होगी? यदि किसी भी किसी प्रकार स्थान में रहने में आप सदैव श्रवण कृष्ण मनन कृष्ण वचन ये सब कर सकते तो ठीक है, और यदि नहीं कर सकते तो स्थान बात नहीं है, स्थान में स्थित होना बात है, सदैव कृष्ण कथा कहना सुनना कृष्ण का चिंतन करना। तो यदि किसी स्थिति में कोई भी वैसे कर सकते तो उसी स्थिति में रहो, और यदि स्थिति प्रतिकूल है तो जो भी करना चाहिए जिससे स्थिति अनुकूल होगा तो करने चाहिए, वही बात है। यदि स्थान ही स्थित है तो मुख्य बात है तो माया संसार में रहो। जैसे जैसे भी तुम हो वैसे रहो, भगवान कृष्ण नहीं कहते ऐसे। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य न मंत एव जीवंती सन्मुखरितम भवदीय वार्तम। तो मुख्य है श्रवण करना, नम्र भावना से, नम्र भाव से श्रवण करना कृष्ण के बारे में। यदि वैसे हो तो श्रील प्रभुपाद इतना सा जो देखे हमको बार बार बताए इस प्रकार वर्णाश्रम प्रकल्प बनाना। स्थान स्थित है उसका मतलब उग्र कर्म के बीच में रहना नहीं। और सब जो स्थानांतरित किया है तो उनके जीवन में और कितना अंतर है स्वयं अनुभव करते प्रतिदिन। तो पहले आप सब जो यहाँ पर है गृहस्थों नाटक गुरंग राधा राधा इत्यादि, तो प्रतिदिन सुबह सुबह उठना मंगल आरती सभी भक्त के साथ जाना और पूरे दिन में भक्तों के संग में रहना, तीन बार दिन में सत्संग करना, तो ऐसा अवसर नहीं मिला। तो तीन बार हफ्ते में सत्संग करना तो नहीं था। और अभी तीन बार एक्चुअली पूरे दिन तो सत्संग होता है, सत्संग विशेषकर श्रवण कीर्तन पूजा इत्यादि, और बाकी समय स्वकर्म के बीच में रहन उसी समय भी सत्संग होते, क्योंकि सभी भक्त सब भक्त है। जो बोलते है कि वो विफले शेवीनु कृपण दूर जाना छापल सुख लाभ लागी रहे, और यही प्रकार स्थिति सब एक ही है। तो अंधा है, किस प्रकार अपने हाथों आंख आंख पर लगाने से अंधा होते। खुद आंखों बंद करके बोलते मैं कुछ भी नहीं देख सकता हूँ, नहीं बोलते मैं सब कुछ देखता हूँ, वो ही समस्या है। अंधा है लेकिन अंधा यथांधा रूप नियमानस्ते पीश तंत्र अमूरुदाम निबाधा। जैसे देख सकते ऐसे बोलते और दूसरे के नेता होते, अंधा जन तो दूसरे अंधे को मार्गदर्शन देना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो ऐसे बोलते है जो श्रील प्रभुपाद सब कुछ जो हमको बताए उसको विपरीत करना चाहते है, उनकी स्थिति क्या है, बहु जन्म करे यदि श्रवण के धन तब तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यही बात है। हरे कृष्ण। Vanta kalpa tarubhyas charkipa sindhavya japadidhanam bhavane bhyo vaishnave bhyo namo namaha. Hare Krishna.